الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم گزشتہ مجلس میں غزوہ ذی عمرہ تک ہم پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی عمرہ سے واپسی کے بعد پورا ربیع الاول کا مہینہ تقریباً مدینہ منورہ میں مقیم رہے. اس کے بعد بحران کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. رابغ ایک مشہور جگہ ہے, وہاں سے تقریباً 90 کلومیٹر کے اوپر یہ بحران نامی جگہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک اچھے مقصد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. مکہ کے قریشی لوگ جو تجارت کے لیے شام سیریا جاتے تھے وہ بحران کے ایریے سے گزر کر کے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ بنو سلیم جو عرب کا ایک خاندان ہے وہاں کے لوگ بحران نامی جگہ پر جمع ہوئے ہیں اور ان کا جمع ہونے کا ناپاک مقصد یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اچھی ترتیب تھی, بہت حکمت بھری ترتیب تھی کہ حضور اگر کہیں سفر میں جانا چاہتے ہیں تو کہاں جانا ہے وہ بات چھپا کے رکھتے تھے اور سوالات دوسری سائٹ کے بارے میں کرتے تھے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ حضور کا سفر کس طرف کا ہے, تاکہ دشمن کے فتنوں سے بچ جاوے. ایگزامپل, ممبئی کی طرف جانا ہو تو حضور کسی کو ممبئی کا بتاتے نہیں تھے, لیکن سوال یہ کرتے تھے مثلا کہ احمد آباد جانا ہو تو پہلے کون سا شہر آئے گا, پھر کون سی سٹی آئے گی, احمد آباد کتنے کلاک کا راستہ ہے. یہ حضور کا ایک انداز, اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا कि हमें भी अपने प्लान को छुपा करके रखना चाहिए, खास करके सफर वगैरह के लिए। आजकल लोग सफर में जाने से बहुत पहले ही अखे गांव में सिर्फ ऐलान करना ही बाकी रखते हैं, बाकी जो मिला उसको कहना, कहते फिरना। फिर वक्त पर प्रोग्राम कैंसल हुआ तो सो आदमी को जवाब भी देने का। इससे बेहतर ये है कि अपने सफर की तरतीब को छुपा करके रखो, इसमें बड़े फायदे। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका है। तो हुजूर 300 सहाबा को लेकर के रबीउल आखर सन 3 हिजरी के अंदर बोहरान की तरफ तशरीफ ले गए। बनू सुलेम का एक आदमी मिला, उसने बताया कि लोग हिम्मत करके जमा तो हुए थे लेकिन सब भाग गए, कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 2 महीने इस इलाके में हुजूर ने कयाम फरमाया और फिर मदीनतुल मुनव्वरा आपकी वापसी हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनों को कमजोर करने के लिए एक बहुत अच्छी तरतीब थी। वो तरतीब ये है कि दुश्मन की इकोनॉमी तोड़ दी जावे, दुश्मन का बिजनेस तोड़ दिया जावे, दुश्मन को पैसों में मजबूत ना होने देवे। इसलिए कि पैसे होंगे, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, मालदार होंगे तो लड़ेंगे, पैसे ही नहीं होंगे तो ढीले होके बैठे रहेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि लड़ाई ना होवे, कत्ल ना होवे, खून ना होवे। इसलिए बेहतर ये है कि दुश्मन की इकोनॉमिक को कमजोर कर दो ताकि वो लड़ने के लिए आवे ही नहीं। अब मक्का के लोग उस जमाने के अंदर बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए सफर करते थे, लेकिन बद्र की लड़ाई के बाद उन लोगों के बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए कि मक्का से ये लोग सीरिया मुल्के शाम बिजनेस करने जाते थे तो उनको जो रास्ता लेना पड़ता था रेड सी का, बुहैरे अहमर उसको कहते हैं, सऊदीया के बहुत से इलाकों में ये समंदर है, वहां से किनारे किनारे ये लोग सफर करके जाते थे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रास्ते के ऊपर जितने भी खानदान रहते थे, जितने भी गांव थे, उन लोगों के साथ दोस्ती कर ली, अच्छे ताल्लुक कर लिए, अच्छे कांटेक्ट कर लिए और पूरे इलाके वालों के साथ जब अच्छे ताल्लुकात हो गए तो कुरैश की हिम्मत नहीं हुई कि उस रास्ते से सफर करके शाम जावे, सीरिया जावे। इसलिए इनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया, पैसों के लिए ये परेशान परेशान हो गए। खाएंगे क्या, बिजनेस नहीं होगा तो, कारोबार नहीं होगा तो। और सूरे ईला फे कुरैश में हम पढ़ते हैं, ईला फे कुरैश ईला फे हिम रिहलत शिताई व सैफ, एक विंटर में ठंडी की सीजन में और दूसरा समर गर्मी की सीजन में, दो सफर कुरैशी लोग सीरिया यमन बिजनेस के लिए जाते थे। और उसी के ऊपर पूरे मक्का वालों का खर्चा और उनका माली निजाम अर्थतंत्र उनका चलता था। लेकिन रास्ते बंद हो गए, कैसे बिजनेस के लिए जाएंगे? इसलिए मक्का वाले बड़े परेशान परेशान हो गए। मक्का का एक बहुत बड़ा लीडर सफवान इब्ने उमैया बेईमान बहुत दिन तक तो चुप रहा। एक दिन उसने अपना मुंह खोला और लोगों को कहने लगा मक्का में कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथियों ने हमारे बिजनेस का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। दरिया के किनारे से क्रोस्टल वे के ऊपर हम जो सफर करते थे वो अब बिल्कुल बंद। कब तक घर बैठे रहेंगे? अब तो घर बैठे बैठे हाल ये है कि हमारे पास जो हमारे पैसे जमा थे हम धीरे धीरे खा पी के उसको खत्म कर रहे हैं। इस तरह घर बैठे बैठे तो हमारा माल सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये बहुत अच्छी सोच है। आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मीरास में वारसाई में कहीं से बड़ी रकम मिल गई तो कहा आप काम करने की क्या जरूरत, बैठे बैठे खाओ। तो एक न एक दिन धीमे धीमे ये दौलत खत्म हो जाएगी। इससे बेहतर ये है कि अल्लाह ताला ने किसी शक्ल में आपको पैसे दिए तो पैसे को बिजनेस में लगाओ, कारोबार में लगाओ, पैसे को ज्यादा करो, बढ़ाओ, हलाल कमाई कमाओ, ताकि वो पैसे आपको फ्यूचर में भविष्य में काम आए, आपकी औलाद को काम आए और उनका फ्यूचर और भविष्य भी अच्छा हो गए। ये घर बैठे बैठे खाना और जो दौलत अल्लाह की तरफ से मिली उसको खत्म कर डालना, ये मिजाज ये सोच अच्छी चीज नहीं है। तो कहा कि अब तो हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। जब सफवान ने ये सारी बात कर ली तो वहां एक दूसरा मक्का का लीडर अस्वद इब्ने मुत्तलिब नाम का बैठा हुआ था, वो कहने लगा कि नया रास्ता अपने लेते हैं और वो रास्ता ये है कि मक्का से वाया इराक नजद होकर के हम सीरिया जावे। लंबा रास्ता है लेकिन घर बैठे रहने से तो अच्छा है। ये घर बैठे बैठे जो कुछ जमा है वो खा रहे हैं, उसके बजाय लंबे रास्ते से बिजनेस करने जावे तो नफा तो मिलेगा, कमाई तो होगी, धंधे जो बिल्कुल बंद है वो चालू हो जाएंगे। तो कहा ये तो बहुत अच्छा मशवरा है लेकिन ये रास्ता हमको मालूम नहीं। और पुराने जमाने में आज की तरह रास्ते आसान नहीं थे, बाकायदा रोड नहीं, कहीं साइन बोर्ड नहीं, जंगलों से पहाड़ों से रेतियों से गुजर करके जाने का। कहा हमें ये रास्ता जो नजद और इराक होके शाम जाता है वो हम नहीं जानते। लेकिन वहां एक शख्स था जिसका नाम फुरात इब्ने हय्यान, वो इस रास्ते को जानता था। अब ये बात कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मक्का वालों का असली रास्ता, पुराना रास्ता, शॉर्टकट वाला रास्ता जिसमें वो सदियों से बिजनेस कर रहे थे, वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नाकाबंदी कर दी कि मक्का के बेईमान लोग उस इलाके में जा नहीं पा रहे थे। और उसकी वजह अगर हम सोचे गौर करें तो सबसे बड़ी बात कि जिस रास्ते से और जिन इलाकों से मक्का वालों का सदियों पुराना ताल्लुक, लेकिन वो सारे ताल्लुक खत्म हो गए, और अब वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छे ताल्लुक कायम करने लगे। उसकी सबसे बड़ी वजह इस्लाम मजहब की सच्चाई कि जब वो शहर वालों ने, गांव वालों ने, खानदान वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस्लाम की सच्चाई देखी तो वो बहुत मुतासिर हुए, इम्प्रेस हुए। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा प्यारे प्यारे अखलाक। तीसरी चीज कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मामलात में बिल्कुल साफ सुथरे थे, किसी से भी लेन देन करते थे तो किसी के पैसों में कोई गड़बड़ी नहीं होती थी, मामलात की सफाई। और चौथी चीज, लूट मार फसाद इन्होंने खत्म कर दिया, पूरे इलाके के इलाके सेफ हो गए, अमन वाले हो गए, सलामत हो गए और पूरे इलाकों में बरकतें आ गई। इसलिए पूरे रास्ते के लोग मक्का के कुरैशियों से उन्होंने ताल्लुक तोड़ दिए और मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए। बहरहाल मक्का वालों ने नया रास्ता लिया, फुरात इनका गाइड बना, बहुत बड़ी मिकदार के अंदर सोना चांदी लेकर के ये लोग शाम बिजनेस के लिए लंबे रास्ते से गए और उन्होंने अपने ये सफर का प्रोग्राम बिल्कुल सीक्रेट रखा, किसी को नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि किसी को बताएंगे तो हमारा राज खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा और कोई भी हमारे काफिले को लूट सकता है, रोक सकता है, हमारे काफिले के ऊपर अटैक कर सकता है। इन्होंने पूरी बात छुपा करके रखी और इनका ये काफिला रवाना हुआ। अल्लाह ताला की यह मुकद्दर ये था कि उनकी बात बिल्कुल ओपन हो जाए। कैसी अजीब तरतीब हुई वो भी सोचने के काबिल है। इस जमाने में भी ऐसी गड़बड़ियां लोग बहुत करते हैं, कराई जाती है। हुआ ये कि अभी उस वक्त तक शराब हराम नहीं थी, शराब तो बहुत बाद में हराम हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, उसके काफी दिनों के बाद शराब हराम हुई। पहले शराब इस्लाम में भी हलाल थी। तो मक्का के एक बड़े लीडर जिनका नाम नुएम इब्ने मसूद है, वो मदीने मुनव्वरा गए हुए थे और मदीना में यहूदियों के यहाँ वो मेहमान बने थे, बनु नदीर के यहूदी। उसमें कीनाना नाम का एक बड़ा लीडर था, उसके यहाँ ये नुएम मेहमान बने हुए थे और वहां खाने पीने की शराब की महफिल चल रही थी। एक सहाबी हजरत सुलेद इब्ने नौमान रदी अल्लाहु ताला अन्हु उस मजलिस के अंदर मौजूद थे, उनकी भी दावत थी और शराब का और खाने का दौर चल रहा था। इतने में जब सबने शराब पी और शराब जो चढ़ी और नशा आया तो ये मक्का का बड़ा लीडर सफवान उसने नशे में आकर के बोल दिया कि हमारा तो एक बिजनेस का काफिला गया है, उसमें 1,00,000 दिरहम दीनार से ज्यादा सोना चांदी है और वो नए रास्ते से गए हैं और इस तरह वाया इराक नजदा वो बिजनेस के लिए गए हुए, वो उसने नशे में आकर के बोल दिया। इसलिए ये बहुत सोचने की चीज है, इस जमाने के अंदर भी इस तरह की गंदी साजिश खेली जाती है कि किसी को दावत करके, किसी को शराब पिला करके स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है और उसमें राज की बात निकलवा ली जाती है, भेद की बात बुलवा दी जाती है, उसके लिए जैसे खाना पीना शराब इस्तेमाल करते हैं, इस तरह नाजायज औरतों को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए और भी जरिए रास्ते अपनाए जाते हैं किसी की राज और भेद की बात बुलवाने के लिए। तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि इस तरह की चीजों का आखिरत में तो नुकसान है ही, लेकिन दुनिया के अंदर भी इसका बड़ा खतरनाक नुकसान है। क्या आदमी जब नशे में आता है तो बेकाबू होकर के भेद की बात भी बोल डालता है, तो उसने भेद की बात सारी बोल डाली। हजरत सुलैत इब्ने नौमान रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने सारी बात सुनी और जाकर के सीधा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर खबर दे दी। तो हुजूर वो मक्का का कुरैशी काफिर लीडर आया हुआ है, आज शराब में मस्त था और उसने बोल डाला कि हमने बिजनेस का नया रास्ता ढूंढ लिया है और नए रास्ते से हमने बहुत बड़ा एक बिजनेस का काफिला शाम भेजा है। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु इनको अमीर बनाया, और अमीर बना करके 100 या कुछ साथी लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया। हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ये वो खुश नसीब सहाबी है कि पूरे कुरान में एक ही सहाबी का नाम है और वो हजरत जैद का नाम है, और किसी सहाबी का नाम पूरे कुरान में नहीं है। कई सहाबा के वाकियात फजाइल इशारतन मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो गारे सौर में हिजरत के सफर में हुजूर के साथ रहे, लेकिन उनका नाम भी कुरान में नहीं है। एक ही सहाबी हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम कुरान में आया है। फलम्मा कदा ज़ैद मिनहा वतरन ज़वजना कहालिका इला यकूना अलल मुमिनीना हरज। और इसके पीछे भी जो है बड़ी राज की बात है कि हुजूर ने उनको अपना लेपालक बनाया था, मुतबन्ना बनाया था, मुंह बोला बेटा बनाया था। सारे मक्का वाले इनको कहते थे जैद इब्ने मोहम्मद, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जैद। लेकिन अल्लाह के यहां से कानून आया कि मुंह बोले बेटे को अपने सगे बेटे की तरह नाम से नहीं रख सकते, असली बाप का नाम चलाना पड़ेगा। जिसने ले पालक बनाया है उसका नाम लगाया नहीं जाएगा। तो फिर उनका नाम उनके असली अब्बा जैद इब्ने हारिसा के नाम से फेमस हुआ। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इनका नाम कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। तो ये हजरत जैद इब्ने हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने अमीर बनाया। हिजरत के तीसरे साल 624 ईस्वी के अंदर ये 100 घोड़े सवारों को लेकर के निकले और जाकर के मक्का के कुरैशी काफिरों के इस काफिले को रास्ते में रोका। 1,00,000 दिरहम हाथ में आए, ये लोग मदीना मुनव्वरा आए तो 20,000 दिरहम खुम्स के तौर पर बैतुल माल में जमा किए, बाकी 80,000 इन सहाबा के बीच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम करवा दिए। इनका जो लीडर था फुरात इब्ने हय्यान, जो नए रास्ते का गाइड बन के गया था, उसको भी पकड़ के लाया गया। ये जासूस था, गाइड भी था, बदर के अंदर भी पकड़ा गया था लेकिन मुसलमानों के हाथ से भाग गया था। इसलिए सहाबा इस पर बहुत गर्म थे कि बदर में भी तू हमारे हाथ से भागा था, आज हमारी आंटी में आया है, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ بات چیت کی اور اس بات چیت کی برکت سے اس نے ایمان قبول کر لیا. اتنی پیارے انداز میں حضرت ابو بکر صدیق نے بات کی کہ اس نے ایمان قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منکم رجالا نقلهم الى ایمانهم منهم فرات بن حیان. یقیناً بے شک تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم ان کے ایمان کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے بس کافی ہے. فرات ابن حیان انہی میں سے ہیں, انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا. غرض یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مبارک یہ تھی کہ دشمن کی اکنامک پوزیشن بک رہے, کمزور رہے, وہ پیسوں کے اندر مضبوط نہ ہوئے. کمزور رہیں گے تو مدینہ پر اٹیک نہیں کریں گے, جھگڑا نہیں ہوگا اور شانتی اور اطمینان سے رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے جا لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتے تھے, سکون چین کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے تھے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب تدبیر اور حکمت عملی کو اپنایا. اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ اس زمانے کے اندر اپنی باتوں کو راز میں رکھا کرو, ہر بات کو لوگوں کے سامنے بولا مت کرو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی بات بھی ان کے منہ میں نہیں رہتی, بات جو ہے لوگوں کے سامنے بول دیا کرتے ہیں, پھر ان کی بات کے اندر حاسد لوگ حسد کرتے ہیں, فتن لوگ فتنے کرتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں. ایک روایت کا مضمون ہے کہ تم اپنے پلان کو چھپا کر راز میں رکھ کر اللہ کی مدد حاصل کرو, ایسا مضمون بھی روایتوں میں آیا. اسی لیے آدمی کوئی اچھا پلان بناوے بزنس کا, سفر کا, کوئی نیک اور اچھے کام کرنے کا, حلال روزی کا, تو اس کو تھوڑا چھپا کے رکھنا چاہیے. بہت لوگوں کے سامنے بول بول کرتے رہنا نہیں چاہیے. اس زمانے میں حاسد بہت لوگ ہیں, حسد کرنے والے, رکاوٹ ڈالنے والے, فتنے ڈالنے والے, مکار لوگ بہت ہیں. اس لیے ایسے زمانے کے اندر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والے اس سبق کو بھی اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی, اور ہم سب کو اللہ عافیت اور سلامتی کے ماحول میں رکھے. نثار احمد راجستھان میں, اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. الحمد لله رب العالمين, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما پوری دنیا کے اہل ایمان پر خصوصی رحم کرم فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایمان والا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والے آل اولاد نسلوں کی ایمان اعمال کی حفاظت فرماؤ جان مال کی حفاظت فرماؤ عزت عصمت کی حفاظت فرماؤ گھر بار کی حفاظت فرماؤ جو اجڑ دی گئے اجاڑ دیے گئے اللہ ان کو آباد فرماؤ بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے ہر ایک کو حلال برکت والی وسیع روزی عطا فرماؤ اے اللہ جو جس الجھن میں ہے اس سے نجات عطا فرماؤ اے اللہ پورے عالم میں عدل و انصاف امن و امان کا بول بالا فرماؤ مظالم کا خاتمہ فرماؤ ظالموں کو بھی ایمان اور ہدایت عطا فرماؤ تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان کی دولت عطا فرماؤ اے اللہ ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں خوب برکت عطا فرماؤ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرماؤ اے اللہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرماؤ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سچا پکا متقی مسلمان بنا دیجئے اے اللہ ارتداد سے حفاظت فرماؤ ہر حرام سے حفاظت فرماؤ اے اللہ مساجد کی مدارس کی دینی اداروں کی دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی اوقاف کی شریعت اسلامیہ کی اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ حفاظت فرماؤ حفاظت فرماؤ ہمارے ملک میں امن شانتی کا ماحول قائم فرماؤ جتنے مذہب اور دھرم کے لوگ یہاں رہتے ہیں ان میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرماؤ ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ لڑائی جھگڑے فتنے انتشار سے حفاظت فرماؤ ایمان کو برباد کرنے والی عصمت کو پامال کرنے والی تمام کوششوں کو ناکام فرماؤ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ اس مجلس میں موجود اپنے تمام بندوں کی بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرماؤ الجنوں کو دور فرماؤ اللہم صلی وسلم و بارک وانعم अला सैयदिना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबी वाला मन तबिअहुम मीसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।